कार्यक्रम के मुताबिक आज भागवत सप्ताह का आखिरी दिन है और वैसे ही हम चलेंगे। कल है आधा घंटा का लेक्चर होगा, लेकिन आज ये 3 अध्याय की पूर्णा होती, वैसे हमने ऑलमोस्ट कल कर ली थी, लेकिन समय का थोड़ा अभाव से आज पूर्णा होती करेंगे अजामिल आख्यान की। प्रभुपाद जी इतिहास लिखते हुए कहते हैं पहले कि ये भागवत में 10 विषय होते हैं, उनमें से ये अजामिल आख्यान से एक विषय शुरू होता है, वो है पोषण। सृष्टि विषय था, वो सृष्टि विषय पूर्ण हुआ और यहां से पोषण अर्थात भगवान द्वारा सुरक्षा का यहां से वर्णन शुरू होता है। ये भौतिक जगत भगवान को बनाना पड़ा, बनाने की इच्छा नहीं थी लेकिन बन गया। जैसे कि राजा को अपने राज्य में जेल बनाने की इच्छा नहीं होती लेकिन बनानी पड़ती है। क्यों? क्योंकि राज्य में कई लोग चोर लुटारू पैदा होंगे ही होंगे। तो इसी तरह ये भौतिक जगत में जो जीव आया वो जीव भगवान से खिलाफ है, भगवान से विमुख है, भगवान का द्वेषी है, भगवान का कॉम्पिटिटर है। मैं भी भगवान हूं और आपसे मेरी कॉम्पिटिशन। तो राज्य में राजा एक होता है, राजा की पोजीशन के लिए कोई कॉम्पिटिशन कॉम्पिट नहीं कर सकता। तो जो कॉम्पिटिटर हैं, चोर हैं, लुटारू हैं, खिलाफ हैं, विमुख हैं राजा से, तो उनको जेल में डालना पड़ता है, जेल बनानी पड़ती है। तो जेल में क्या होता है, डालना ये भौतिक जगत में ये जीवों को डाला गया या जीव खुद आ गया विमुख होके, तो उसमें से उगरने का, निकलने का, मुक्त होने का, होने की कोई व्यवस्था होनी ही चाहिए। जेल में ऐसा नहीं कि देयर इज एटर्नल कंडमनेशन इन द जेल, देयर इज नो एटर्नल कंडमनेशन। और ये भौतिक जगत में कोई भी जीव सनातन काल भौतिक जगत में ही रहेगा ऐसा भगवान की व्यवस्था नहीं है, ऐसी भगवान की व्यवस्था नहीं है। ये जेल में से मुक्ति उनको करेक्ट करके, उनको सुधार करके, जेल सुधारक केंद्र है, सुधार करके जेल में से जेली को मुक्त किया जाता है। तो ये पोषण, ये अभी तक जो विषय नहीं हुआ, अभी ये विषय शुरू हुआ। प्रभुपाद जी कहते हैं कि ये पोषण है या सुरक्षा का वर्णन अभी शुरू हुआ। सुरक्षा, पोषण, जेल में पोषण है। जेल में ऐसा नहीं कि जेली, जो भी जेल में है वो सनातन काल तक जेल में ही रहेगा। ऐसे कई जेली हैं कि सनातन काल तक उनको जेल मिलती है, या तो उनको कई शिक्षाएं, लेकिन ये प्रयोजन जेल का नहीं। प्रयोजन जेल का प्रयोजन है जेली को सुधार करें, उनका सुधार करें और बाद में उनको मुक्त करें। तो सुधार करने के लिए कहीं व्यवस्था जेल में होती है, उनको करेक्शन करने के लिए, उनको करेक्ट करने के लिए, उनको मार मारते हैं, या तो उनसे चक्की से पिसाते हैं, या तो पत्थर तोड़ते हैं, या सॉलिटरी कन्फाइनमेंट, उनको अंधियारी कोठरी में कई दिन तक रखते हैं, खाना कम देते हैं, खाना नहीं देते हैं। कहीं कहीं ऐसी सुधार करने की व्यवस्था जेल में बनाई है। तो अगर ये जेली जो चोर है जेल में, अगर वो फॉलो करेगा सब और सुधार उनका हो जाएगा तो उनको मुक्ति मिल सकती है। उसी तरह ये अध्याय में हमारी मुक्ति, ये संसार मोचन कैसे हो, ये अध्याय और आगे वाले अध्याय, ये सारा आगे वाले अध्यायों में व्यवस्था के जेल में से आप कैसे छूट सकते हो, तो ये पोषण है, जीवों का पोषण अनेक विधि रीत बताई है जिससे ये जीव ये जेल में से मुक्त हो जाए। और ज्यादातर व्रत, तप, नियम ये करने वाले, हवन, याग, उनसे ज्यादातर लोग ये ब्रह्मांड में, स्वर्ग में, नरक में, स्वर्ग नरक, पृथ्वी मृत्यु लोक, पृथ्वी, तो ये गतागतम काम कामा लभन्ते, अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए गतागतम, जाना स्वर्ग, आना वापस, तेतम भुक्त्वा स्वर्गलोकम विशालम क्षिणे पुण्ये मृत्युलोकम विशन्ति, ऐत्रयी धर्म अनुप्रपन्ना गतागतम काम कामा लभन्ते। तो कई लोग ये गतागतम काम कामा लभन्ते इसमें ही फंसे रहते हैं। तो ये पोषण नहीं है, पोषण नहीं है। पोषण का अर्थ है कि जिन प्रक्रिया से आपका ये संसार से मोचन, ये संसार से मुक्ति हो। संसार अर्थात चार चीजें, जन्म मृत्यु जरा व्याधि का चक्कर, श्रृंखला, इनको बोलते हैं संसार। तो ये संसार, ये चार, ये संसार में सबसे बड़े दुख हैं, सबसे बड़े दुख जन्म मृत्यु बुढ़ापा और रोग, ये सबसे बड़े दुख हैं। और ये दुख से मुक्ति कैसे हो, ये विषय है पोषण। तो ये यहां ये अध्याय, तीन अध्याय में, अजामिल आख्यान में सुंदर, सबसे बड़ा श्रेष्ठ इलाज ये संसार मोचन का, संसार को बाय बाय करने का सबसे बड़ा इलाज, इससे बड़ा इलाज कोई नहीं है। इतना बड़ा इलाज सबसे पहले चैप्टर में, पहले सबसे पहले आख्यान में बता दिया। तो ये क्या है, ये आज हम सारा सारांश और सारी कथा का हम सारांश सीखेंगे। तो यहाँ एक कथा के रूप में हमें बताया गया कि कनौज, कन्याकुब्ज, कनौज कानपुर के नज़दीक, जो कनौज के ब्राह्मण हैं, बहुत उच्च कक्षा के होते हैं, तो वहाँ एक ब्राह्मण था, उनका नाम था अजामिल, बहुत रूढ़ी चुस्त ब्राह्मण, शुद्ध ब्राह्मण, सारे विधि निषेध, और अपने पिताजी का वो आज्ञांकिक लड़का था अजामिल। तो अपने पिताजी के लिए सुमेधा, जो लकड़ी, सुमेधा, सुमेधा बुद्धिमान, जो लड़की होती है बुद्धिमान, ये लड़की को बोलते हैं सुमेधा, लेकिन ये लकड़ी लड़की नहीं, लकड़ी। तो लकड़ी जो यज्ञ में जिनका उपयोग किया जाता है, तो वो लेने, फल फूल पत्ते सब इकट्ठा करने के लिए वन में जाता है। तो वन में से वापस लौटते हुए रास्ते में उनको एक शूद्र और शूद्राणी जो नीच वर्ण के होते हैं, तो किसी की कोई शर्म नहीं रखते ये लोग, तो शूद्र और शूद्राणी यंग दोनों एक दूसरों से आलिंगन करते हुए, पब्लिक में आलिंगन करते हुए वो एक दूसरों से संयोग कर रहे थे। तो ये दृश्य देखते हुए इनका मन मलिन हो जाता है, तो वो अपने ब्राह्मणत्व से गिर जाता है और वो खुद सादी सुंदर स्त्री से हुई थी, लेकिन उनका चेतना, कॉन्शियसनेस बदल गई, चेतना उनकी बदल गई, गिर गया ब्राह्मणत्व से। तो अपनी सुंदर पत्नी, पिता, घर सब छोड़ के, छोड़ छाड़ के एक वेश्या के साथ वो शादी करता है, और बाद में उन वेश्या के पुत्र प्लस उनसे पैदा हुआ 10 पुत्र, ये सब का भरण पोषण, चोरी लूटपाट भरण पोषण करता था। तो संयोग वसात सौभाग्य से अपने छोटे पुत्र का नाम उनने नारायण रखा था। तो जब 82 साल का वो हुआ, तब उनकी मृत्यु नजदीक आई, उन्हें देखा नहीं, लेकिन उन्हें दिखाई दिया कि मेरे पास 3 बहुत विभावने, बहुत भयानक शरीर वाले 3 पुरुष, काले पुरुष हैं, उनका चेहरा टेढ़ा मेढ़ा है, उनके रोंगटे बिल्कुल सुई की तरह खड़े हैं कड़क, और हाथ में पाश लंबी रस्सी लेके आए हैं, और त्रिशूल खड़ग तरवाल वगैरह। तो ये दृश्य उनको दिखाई देता है अंतकाल, और वो बहुत घबरा जाता है। ये 3 व्यक्ति यमदूत उनको पास से, वो उनके आत्मा को, उनको अर्थात उनको, उनके हृदय में से, उनको मैंने बोला था तो उसी तरह नारकीय शरीर पहले तो देते हैं जीव को, जो नरक में वेतनाएं झेलने के लिए जो शरीर अलग होता है ये शरीर से, वो शरीर आत्मा से कभी अलग नहीं होता। उनको फ्राई करो, भूनो, उनको रोस्ट करो, उनको वो शरीर को काटो, या तो चक्की में चलाओ, ये शरीर जीव से अलग नहीं होता जब तक वो जीव का रेफॉर्मेशन, सब पापों का प्रायश्चित पूरा ना हो, तब तक ये शरीर उनका, उनके साथ रहता है। वर्णन है कि इतना लंबा, करोड़ों योजन जैसा लंबा रास्ता, चौड़ा, बिल्कुल चौड़ा रास्ता है, ऊपर से सूर्य का तापमान, नीचे से भी तापमान, और उसके ऊपर ये सब पापी जीवों को बांध के चलाए जाते हैं नरक में ले जाने के लिए, ऐसा वर्णन है। और शरीर छोड़ना चाहते हैं, रास्ते से ऑफ हो जाना चाहते हैं, लेकिन ये नहीं हो सकता, तो ऐसा वर्णन है। और वैतरणी नदी है, वैतरणी नरक में, वैकुंठ नहीं, कुंठ जहां नहीं वो वैकुंठ, उसी तरह वै नहीं, तरणी वैतरणी, तैर नहीं सकते आप वो नदी में, आपको हाबुडुबू भाई, हाबुडुबू, और उसमें पास, हड्डी, नाखून, बाल, कीड़े और सब गंदी गंदी विष्ठा, मल मूत्र, सब गंदी चीजें वैतरणी नदी में, ये नरक में नदी होती है। तो आप तैर जाना चाहते हो वेतना से, कि दुख से, कि मैं निकल जाऊं यहां से उधर उस पार चला जाऊं, लेकिन ये शरीर ऐसा होता है नारकी शरीर, जैसे एक श्लोक में सह नारकी बुद्धि, उनकी बुद्धि नारकी है, तो नरक की बुद्धि अर्थात ये नारकी बुद्धि। हरे कृष्णा नारकी बुद्धि, नारकी शरीर, नारकी वृत्तियां, सब कुछ नरक का अलग हिसाब किताब। तो अजामिल बिल्कुल अंत में आ गया और उनकी मौत होने वाली थी, और ये नरक से तीन यमदूत आए और उनको रस्सी से उनका शरीर खींचते हैं, और बहुत घबरा गया, डर लग गया, तो अपना पुत्र बहुत दूरी पर, थोड़ी दूरी पर खेलता था, छोटा सा पुत्र, उनमें उसको बहुत प्यार था, अतिशय प्रिय था, क्योंकि वो छोटा था, छोटे बच्चे में सब माँ बाप को, स्पेशली माँ बाप को उनमें प्रेम ज्यादा होता है। तो कोई दूसरे लड़के, बहुत से पुत्र थे उनके, लेकिन दूसरों को न बुलाते हुए सबसे प्यारा जो उनका बेटा था उनको बुला रहा है, ना रा या अण, ऐसा अलग अलग, तो अंतकाल है तो ऐसे अलग अलग शब्दों में भी उनने नारायण नाम उच्चारण किया अपने बेटे का, संकेत में, बेटे का संकेत। तो नारायण कृष्णा और कृष्ण का नाम अभिन्न त्व नाम नामिनो, नाम और नामिनो कृष्णा अभिन्न है, इसलिए उनको तुरंत वो नाम की जो शक्ति, नाम नामकारी बहुदान निज सर्व शक्ति, भगवान ने अपने नामों में सब शक्ति का संचार किया है, सब शक्ति का समावेश अपने नाम में किया है, इसीलिए नाम सब कुछ कर सकता है जो कृष्णा कर सकते हैं, कृष्णा जो भी कर सकते हैं वो नाम कर सकता है, अभिन्न है नाम और नामिनो अभिन्न है। तो श्री कृष्ण को दो हाथ हैं, तो नाम को भी कितने हाथ हैं? दो हाथ। श्री कृष्ण को इतनी बड़ी बुद्धि है, तो नाम को कितनी बड़ी बुद्धि है? जितनी श्री कृष्ण की, अभिन्न है, क्योंकि शक्ति भी एक है, जितनी कृष्ण में शक्ति इतनी नाम में शक्ति, नाम और कृष्णा एक ही बात है। तो उनके नाम में मति बुद्धि, नाम में उनका कॉन्सेंट्रेशन हो गया, क्यों? क्योंकि घबराया हुआ था और बेवश होके अपने पुत्र को हेल्प के लिए वो बुला रहा, लेकिन पुत्र का नाम श्री कृष्ण का नाम होते हुए श्री कृष्ण ही वहां मौजूद हो गए अपने चार दूतों के रूप में, और दूत भी इधर उधर घूमते रहते हैं, विष्णु दूत, चार दूत नहीं, विष्णु के कई दूत हैं, अगणित अनगिनित दूत हैं, तो वो घूमते रहते हैं, जहां भी भक्त लोग हैं वहां वो विष्णु दूत भक्तों की रक्षा के लिए गदा लेके, खुद विष्णु भगवान भी कृष्णा भक्तों की रक्षा के लिए घूमते हैं। तो वहां सीन पर अपने भर्तु, अपने 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 पति विष्णु भगवान का नाम सुन के तुरंत वो विष्णुदूत वहां रुक गए, कि कोई नाम से, मेरे स्वामी के नाम से कोई पुकार रहा है, बेवश होके, विवश, विवस्था से, अवहेलना से, संगीत में, जोक में, परिहास में, गाना में, कैसे भी भगवान का नाम जो भी करता है, विष्णुदूत वहां तुरंत पहुंच जाते। तो उनने अपने बेटे का नाम लिया और उन विष्णुदूतों ने सुना कि हमारे मालिक का, मेरे हमारे भर्तु का, मालिक का ये नाम बोल रहा है, तो तुरंत वहां गदा लेके यमदूतों को ललकारा, खबरदार रुक जाओ। तो यमदूत तुरंत बहुत आश्चर्य में आ गए कि यहाँ का स्वामी तो एक ही है यम, यमराज, और ये किसके सेवक आ गए? क्या यमराज से भी कोई ऊपर है? ऐसा उनको तुरंत विचार आया। तो ये विष्णुदूत उनको रोक देते हैं और यमदूतों को बाद में पूछते हैं कि धर्म क्या है, आप ये अधर्मियों को पकड़ के, पापियों को पकड़ के नरक में ले जाना आपका कर्तव्य है। लेकिन आश्चर्य की बात है कि ऐसे बड़े महान व्यक्ति यमराज के दूत, महान व्यक्ति यमराज, उनके दूत को इतनी भी अक्ल नहीं है कि किसको नरक में ले जाना चाहिए और किसको नहीं ले जाना चाहिए। आश्चर्य की बात है कि इन लोगों को ये भी पता नहीं कि किसको नरक में ले जाया जाए। और विष्णुदूत बाद में उनको पूछते हैं धर्म क्या है, अधर्म क्या है, चर्चा चलती है। तो बाद में यमदूत वो चले जाते हैं यमराज के पास वापस, और विष्णुदूत भी चले जाते हैं। सीन में से ये दोनों हट गए और अजामिल को अपनी जिंदगी वापस मिली। वो समझ गया क्योंकि पूर्व जीवन, मतलब अर्थात जो बचपन का जीवन उनका था, वो जीवन के सारे संस्कार उनके फिर से जागृत हो गए। जैसे मेरा भी एग्जाम्पल यही है कि हम गए थे बड़े साहब बनने, ये प्रभुपाद जी का बहुत पेटेंट वर्ड था इंडियन लोगों के लिए। तो टोरंटो में मैं उनसे मिला, भेंट हुई, तो बोलते थे बड़े साहब बनने आए हैं आप लोग सब बड़े साहब बनने के लिए आए हैं यहाँ। तो बड़े साहब बनने लेके बड़े साहब बनने गए थे, लेकिन माता, स्पेशली माता और पिता का भी, पिता भी परम वैष्णव थे, माता भी परम वैष्णवी थी, कोई कमी नहीं थी उनकी भक्ति में, कोई कमी नहीं थी। आखिरी में मैंने कहा था पहले, आखिरी में भगवान श्री कृष्ण का नाम लिया और उसके ऊपर मेरे साथ युद्ध किया। मैं बोलती हूँ भगवान का नाम आप क्यों रोकते हो, मैं बोलता हूँ आप भगवान का नाम, कृष्ण का नाम न लेते हुए आप ध्यान करो, एक ही बात है, मन में ध्यान करो। तो मैं थोड़ा ऊपर बड़ा चढ़ा, मुझे इतना अहंकार था कि मैं बड़ा भक्त हूँ उनसे, तो उनको कुछ शिक्षा दूं। और आखिरी समय था, मुझे इतना ध्यान नहीं रहा कि ये आखिरी समय है, लेकिन डॉक्टरों को पता था, लेकिन मुझे ये ख्याल नहीं हुआ। और उन जवान 30 साल का जवान, उनको ब्लड प्रेशर क्या पता, उनको डायबिटीज क्या पता, फुल जोश, मुझे कुछ ये पता ही नहीं था कि इनको उनके पंपिंग बहुत बढ़ गया। लेकिन ये सीन था, मैंने देखा। तो माता मुझे कह रही है कि ये दान ये मंदिर में करना, ये दान ये मंदिर में करना, इनको देना ब्राह्मणों को। और हरे कृष्णा ने वो कृष्णा कृष्णा बोल रही थी, वैसे 32 माला करती थी, हरे कृष्णा बोलना चाहिए था, लेकिन एक ही बात, कृष्णा 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 बोल रही। तो ये संस्कार, जो मेरे संस्कार पीछे जो थे माँ बाप के, तो बड़े साहब बनने गए थे तो प्रभुपाद लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि होय, एक घड़ी आधी घड़ी आधी में पुनियाद, तुलसी संगति साधु की हरे कोटि अपराध। तो साधु एक नजर, शुद्ध भक्त की एक नजर काफी है आपका कल्याण करने में। शुद्ध भक्त की एक लव मात्र संगति, आपके पूर्व का जो संस्कार है वो तुरंत, तो ये काफी है। तो ये अजामिल, सब दोनों पार्टी चली गई, तो अजामिल को उनके संस्कार फिर से उनके दिमाग में, उनके हृदय में स्फुरित हुए, तो तुरंत सब कुछ छोड़ छाड़ के गंगा गंगा याम या गंगा मुखम, गंगा मुखम ये शब्द है। गंगा मुख पर चला गया अर्थात हरिद्वार चला गया और हरिद्वार जाके मंदिर में बैठ गया समाधि। बस कोई दूसरा काम नहीं, एक ही काम, एक निष्ठा, एक निष्ठ होके आत्यंतिक भक्त होके वो श्री कृष्ण का मंत्र हरे मंत्र जप करने लगा। तो आखिरी दिन आए तो वैकुंठ से श्री नारायण के दूत सुंदर सोने का विमान लेके आए। आगे वाले श्लोकों में कहा गया है कि जब भक्त वापस आता है वैकुंठ में, गोलोक वृंदावन में, कृष्ण लोक में, तो बैंड बाजे, उनका स्वागत, हार तोरा और उनकी श्लाघा और उनका सत्कार इतनी धामधूम से किया जाता है, इतनी धामधूम से। और नरक में जाते हैं तो उल्टा कोड़े, उनको पहले तो कोड़े से स्वागत होता, तो इतना सुंदर स्वागत हुआ उनका अजामिल का। और बाद में आखिरी चैप्टर में यमदूत और विष्णुदूत दोनों का संवाद है और ये संवाद हम सुन रहे थे। तो उसमें आज हमने कल थोड़ा छेड़ लिया था श्लोक, तो वहां से शुरू करेंगे 33। तो भगवान का नाम मैं शुरू करूं ये श्लोक, उससे पहले मुझे जो तात्पर्य बताना है वो बता दूं। वो तात्पर्य है कि व्रत या आप आग हवन नियम सब कुछ, चांद्रायणी व्रत, बादरायण क्रूश चांद्रायणी व्रत, जैसे चंद्र क्रूश होता जाता है, पूर्णिमा बाद में कम होता जाता है, तो उसी तरह इतने कौर हर रोज खाना और कड़ा व्रत रखना चांद्रायण व्रत। तो और जैसे वो चंद्र फिर से दूज का तो दो कौर, तीज का तीन कौर, तो ऐसे ये व्रत करना होगा होता है। तो ये सब व्रत से और किसी से भी कल्याण ये भौतिक जगत से नहीं होगा। हम स्वर्ग के लिए यज्ञ रिष्ट्वा स्वर्गतिम पार्थयन्ते ते सुरेंद्र लोकम अस्नान्ति देवी देवान देव भोगान। तो ये स्वर्ग, स्वर्ग मिलेगा ये सब यज्ञ से। तो ये रीत नहीं है। धर्म बजाएंगे तो ये धर्म बजाने से भी हमारा कल्याण नहीं होगा। धर्म से भी, धर्म का अर्थ है राइचियस, धर्म का अर्थ है कि पुण्य करना, पुण्य करके हमें पुण्य करेंगे धर्म बजा के, धर्म अर्थ काम मोक्ष। सो धर्म बजाएंगे तो धर्म से हमें पुण्य मिलेगा और पुण्य का फल है स्वर्ग, पुण्य का, और पाप का फल है नरक। और वो कर्म और विकर्म और अकर्म का फल है, अकर्म अर्थात भगवान श्री कृष्ण की शुद्ध भक्ति, शुद्ध नाम 16 माला, शुद्ध नाम जप करना, ये शुद्ध भक्ति, श्री कृष्ण का शुद्ध प्रेम आपके हृदय में संपूर्णतया जागृत करेगा। तो ये अकर्म ही, अकर्म अर्थात कोई सत्कर्म नहीं और दुष्कर्म नहीं, धर्म नहीं और अधर्म नहीं, अकर्म का अर्थ है भगवान श्री कृष्ण की भक्ति। तो ये श्री कृष्ण की शुद्ध भक्ति ही हमें श्री कृष्ण का प्रेम देगी, श्री कृष्ण का धाम, श्री कृष्ण का रूप, श्री कृष्ण का सान्निध्य, सालोक्य साष्टी सान्निध्य सारूप्य सायुज्य इति उत दीयमाणां न गृणन्ति विना मत सेवना जना। ये 5 प्रकार की मुक्ति है। तो ये मुक्ति भी नहीं चाहिए। तो हमें ये आख्यान में क्या उपाय बताया है कि भगवान श्री कृष्ण का नाम ही सर्वोत्तम उपाय है। क्यों? उदाहरण क्या दिया? निराहार पश्चित केवलया भक्त्या वासुदेव परायण अगम धुणवंति कात्सन्ये निराहार एव भास्कर। तो ये श्लोक जो है, यही श्लोक सबसे बड़ा उपाय है। ये श्लोक कर्म से नहीं होगा, ज्ञान योग से नहीं होगा, कर्म योग से नहीं होगा, लेकिन क्वचित केवल या भक्त्या वासुदेव परायण अगम धुणवंति कात्सन्ये निहार एव भास्कर। तो जैसे सूर्योदय होता है, तो सूर्योदय होते ही सारा कोहरा खत्म हो जाता है। तो सूर्योदय का मतलब, सूर्योदय का अर्थ, सूर्योदय का प्रयोजन ये नहीं होता कि कोहरे को भगाना, ये नहीं होता। सूर्योदय का अर्थ है कि सबको कर्म करने के लिए सुविधा देना, शक्ति देना, ताकत देना, ये सूर्योदय का मतलब अर्थ है। लेकिन ये मुख्य अर्थ संपादन सूर्य करता है तो आपो आप कोहरा भी भाग जाता है, कोई अलग प्रयत्न नहीं करना पड़ता। उसी तरह क्वचित केवल या भक्त्या, भक्ति का प्रयोजन है श्री कृष्ण हमारे शुद्ध प्रेमी बने, श्री कृष्ण हमारे प्रेमी बने, उनको हमारे बिना एक क्षण भी वो रह न पाए। गोपियों के बिना, ग्वालों के बिना, नंद महाराज जसोदा के बिना श्री कृष्ण एक सेकंड भी नहीं रह पाए। मथुरा गए, वहां भी रोते ही रहे, उद्धव मुझे ब्रज विसरत नाही। वो शरीर से वहां थे लेकिन मन से, बुद्धि से, चेतना से व्रज विसरत नाही। तो श्री कृष्ण को हमारे गुरुदेव के गुरुदेव, प्रभुपाद के प्रभुपाद जी कहते थे कि ऐसा नहीं कि मुझे श्री कृष्ण के दर्शन करने हैं, ऐसा नहीं, श्री कृष्ण हमारा दर्शन करने आए, ऐसा भक्त बनना है हमें, श्री कृष्ण हमारी ओर आकृष्ट हो, श्री कृष्ण को हमारे बिना नहीं चले एक सेकंड भी, वो शुद्ध भक्ति। क्वचित केवल या भक्त्या, ये शुद्ध भक्ति है। शुद्ध भक्ति ये है कि भगवान श्री कृष्ण को एक क्षण हमारे बिना नहीं जाए। अहम भक्त पराधीनो ही प्रिय, भक्तैर भक्त जन प्रिय, मुझे मेरे भक्त के जो जन है वो प्रिय, भक्त प्रिय है इतना नहीं, भक्तैर भक्त जन प्रिय, भक्तों के जन, माता भक्त की पिता, भक्त की माता भक्त के पिता, भक्त के भाई। प्रहलाद महाराज को नरसिंह देव कहते हैं कि 71 जनरेशन बैक एंड फोर्थ आपकी मैंने मुक्त कर दी, 21 जनरेशन मुक्त। भक्तैर भक्त जन प्रिय, क्या है भाषांतर? भक्तैर भक्त जन प्रिय, साधु साधु वीर ग्रस्त हृदयो भक्तैर भक्त जन प्रिय। अहम भक्त पराधीनो, मैं भक्तों से पराधीन हूँ, अहम भक्त पराधीनो ही न स्वतंत्र इव द्विज, हे द्विज, हे दुर्वासा मुनि, मैं भक्तों से पराधीन हूँ, भक्त मुझे बांध देता है तो हाथ छुड़ा कर जाते हो दुर्बल जा, मुझे भक्त जब बांध देता है तो मेरे बस में नहीं कि मैं छूट जाऊं, और उनके बिना मैं, मुझे चलेगा भी नहीं, ये भक्तों के बिना मुझे चलेगा भी नहीं। तो ये है भक्ति, भक्तैर भक्त जन प्रिय, मुझे भक्त प्रिय है ऐसा नहीं, भक्तों का जन चाहे वो राक्षस हो, भक्तों का पिता चाहे राक्षस हो, प्रहलाद महाराज के पिता राक्षस थे, जय विजय था, भक्त थे लेकिन रोल राक्षस का था। तो भक्तों का जन भी मुझे अतिशय प्रिय है, और हम भक्त पराधीन हूँ, मैं पराधीन हूँ, मेरे बस में नहीं चलता, हम भक्त पराधीन हूँ। अस्वतंत्र एवं द्विजा, और मैं अस्वतंत्र हूं, मैं स्वतंत्र नहीं हूं। तो ये भक्ति नाम लेने से ये भक्ति हमारे हृदय में जागृत होती है। कृष्ण को हमारे बिना एक पल भी नहीं चले, क्वचित केवल या भक्त। तो ये भक्ति का प्रयोजन ये है श्री कृष्ण का शुद्ध प्रेम, और ये प्रेम के साथ ही सारे पाप। कोई अलग सी भक्ति नहीं करनी है कि पाप जल जाए, अलग सा कोई जैसे सूर्य उगता है अलग सा कोई प्रयत्न नहीं कि कुहरा चला जाए। तो ये भक्ति, और भक्ति की भक्ति नवडा भक्ति, कल मैंने कहा था कि नवडा भक्ति 9 प्रकार की भक्ति, प्रहलाद महाराज कई प्रकार की भक्ति है। भजनेर मध्य श्रेष्ठ नवविधा भक्ति, कृष्ण प्रेम कृष्ण आदित्य धरे महाशक्ति चैतन्य चरितामृत। भजनेर मध्य श्रेष्ठ नवडा भक्ति, भजन में श्रेष्ठ ये नवडा भक्ति है। कई प्रकार का भगत भजन है, जितने जीव इतने प्रकार की भक्ति, इतने प्रकार के भक्ति होती है। अब हर जीव की भक्ति करना तरीका अलग अलग है, और उसमें मुख्य भक्ति है ये नवडा भक्ति, नवविधा भक्ति। तो भजनेर मध्य श्रेष्ठ नवविधा भक्ति, कृष्ण प्रेम कृष्ण दिते धरे महाशक्ति, ये भक्ति में महाशक्ति है। और क्या महाशक्ति है? श्री कृष्ण को वो भक्त का बालक बना देता है, बना देती है भक्त। कृष्ण को भक्ति भक्त का सेवक बना देती है, बलि महाराज के द्वारपाल। तो ये भक्ति में महाशक्ति है कृष्ण को बांधने की। और तार मध्य ये नवडा भक्ति में, तार मध्य सर्वश्रेष्ठ नाम संकीर्तन, निर अपराधे नाम लये पाए कृष्ण प्रेम धन, श्री कृष्ण का प्रेम धन ये नाम तार मध्य। आज सुबह मुझे सवाल कहा किया किसी ने, लेक्चर दे रहा था तो लेक्चर में सवाल किया किसी ने कि ये नवडा भक्ति में हरि नाम कीर्तन ही श्रेष्ठ क्यों? तो आप ये नवडा भक्ति में, नवडा भक्ति है श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम अर्चनम वंदनम साख्यम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम साख्यम दास्यम आत्मनिवेदनम। तो ये नवडा भक्ति है। ये नवडा भक्ति में ये हरिनाम क्यों श्रेष्ठ? तो पहला है कि श्रवणम, तो श्रवण आप कितना घंटा कर पाओगे, कितना घंटा श्रवण करोगे और कहाँ श्रवण करोगे, कैसे श्रवण करोगे? अभी तो ठीक है कान में MP3 प्लेयर्स आ गए हैं, या तो फोन में MP3 प्लेयर्स लगा दिए हैं तो लोग कान में लगाए रखते हैं, तो ऐसे भक्त कर सकता है, लेकिन थक जाते हैं कान, घंटा दो घंटा बाद में इनफ नहीं कर सकते। तो नवडा भक्ति में पहला प्रकार है कि श्रवणम कीर्तनम, कीर्तन ये आखिरी में हम सोचेंगे, और विष्णु स्मरणम कितना हम स्मरण कर पा सकते हैं, एक मिनट भी कॉन्सेंट्रेशन स्मरण नहीं कर सकते, ये आधी मिनट भी नहीं कर सकते। तो ये सरल नहीं है स्मरणम विष्णु स्मरण। पाद सेवन, आप भगवान के चरणों की सेवा 24 घंटे में कितनी कर पाओगे? सुबह शाम अगर आपने आपके ठाकुर जी को कुछ नहलाया, अभिषेक किया, श्रृंगार किया, तो पाद सेवन आप कर सकते हो, लेकिन कितना घंटा, 24 घंटे में से कितना घंटा स्मरण और श्रवण भक्ति, 24 घंटे में से कितना घंटा हम कर सकते हैं? और पाद सेवन अर्चन, सुबह शाम अर्चन करना, पूजा करना, तो कितना घंटा हम कर सकते हैं 24 घंटे में से? अर्चनम वंदनम भगवान को वंदन करना, साख्यम सखा भाव से भक्ति करना, आत्मनिवेदन संपूर्णतया समर्पित, हमारा जो है वो और हम और हमारा श्री कृष्ण के चरणों में अर्पित कर देना, सारा बैंक बैलेंस, सारी कोठियां, सारी सब कुछ, गाड़ियां लाड़ियां जो भी आपके पास है, आत्मनिवेदन, जैसे बलि महाराज ने किया आत्मनिवेदन, कौन कर पाएगा? तो और ये जीभ और मुंह सारे 24 घंटे में उनका कार्य कितना, ज्यादा से ज्यादा घंटा दो घंटा खाना और बोलना, कितना खाओगे कितना बोलोगे? 2 घंटा ज्यादा से ज्यादा, और बाकी का समय हरे कृष्णा कीर्तनीय सदा हरि, सततम कीर्तयंतो माम। सतत मेरा कीर्तन, भगवान बोल रहे हैं तो प्रैक्टिकल होगा तब तो हमें कह रहे हैं, लेकिन स्मरण सततम, स्मरण सततम, पाद सेवा सततम, अर्चनम सततम, आत्मनिवेदनम सततम, कोई बात सतत नहीं कही, सततम कीर्तयंतो माम यतंतश्च दृढ़व्रताः नमस्यंतस्य माम भक्त्या नित्य युक्त। नित्य युक्त कीर्तन में नित्य युक्त हो सकते हैं। हरिदास ठाकुर ने ये किया अराउंड द क्लॉक, वेश्या का उदाहरण है, अराउंड द क्लॉक चॉइस, वो सो गई और उठी, फिर से कहती है अंग संग, तो कहते हैं मेरा नियम जप, मेरा जप करने का नियम है वो पूरा हो तुरंत हम अंग संग करेंगे, तो दूसरे दिन का उनका नियम शुरू हो जाता है अराउंड द क्लॉक। तो ये नाम हम मुंह और चलाते हुए खाईते पीते यथा तथा नाम लय, देश काल नियम नाही सर्व सिद्धि होय। खाईते सुईते गाड़ी चलाते हुए, खाना पकाते हुए, खाते हुए, सोते हुए, चलते हुए, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम हरे, कौन नहीं बोल सकता? तो पकड़ ली, ताकि वो जीभ हरि नाम मत करे क्योंकि सोच क्रिया कर रहे हैं। तो वहां से छोटा सा बालक गोपाल, गुरु गोपाल वहां से गुजर रहा है, तो चैतन्य महाप्रभु ने देखा जीभ पकड़ते हुए, तो छोटे बालक का कोई विकार है नहीं, वहां से गुजर रहा था, तो चैतन्य महाप्रभु को बालक कहता है गोपाल कि आपने जीभ क्यों पकड़ी है? तो बोलते हैं मेरी जीभ भगवान का नाम लिए बिना रह नहीं सकती, और अभी ये शौच क्रिया में नाम रुक जाए तो अच्छा है, इसलिए मैंने पकड़ी है। तो गोपाल गुरु कहता है यथा, वो कहता है कि भगवान का नाम सुचिरवा असुचिरवा सर्व अवस्थासु सर्वदा, पवित्र हो अपवित्र हो, अपवित्र जगह हो, कहीं भी भगवान का नाम कर सकते हो। भगवान का नाम परम पवित्र है, था और रहेगा, वो अपवित्र नहीं होता, भगवान का नाम परम पवित्र ही रहता। हमारे गुरुदेव के चौथे पांचवें गुरु वो टॉयलेट में नाम करते थे, टॉयलेट में। क्यों ऐसा क्यों करते थे? क्या ताकि लोग बहुत डिस्टर्ब करते थे उनको, लोग आके मुझे ये वर दो, मुझे वर दो, मुझे ये करो, मुझे दीक्षा दो, मुझे भिक्षा, मुझे करो। तो नाम जप में डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए। गौर किशोर दास बाबा जी महाराज टॉयलेट में, तो सरकार ने कहा, सरकारी लोगों ने कहा कि महाराज आप ये टॉयलेट छोड़ दीजिए, आपको हम बहुत सुंदर एक कुटिया, अच्छी सुंदर, इससे करोड़ों गुणी अच्छी कुटिया बना देते, अब वहां भजन की। तो नहीं, दरवाजा बंद के टॉयलेट का दरवाजा, पब्लिक टॉयलेट का दरवाजा बंद करके हरिनाम करते थे ताकि डिस्टर्बेंस ना हो। ऐसा नहीं कि हम, आई एम नॉट एडवोकेटिंग दैट यू शुड चैंट हरे कृष्णा इन टॉयलेट, नो, माला नहीं ले जाए कोई, मैंने कहा तो कोई माला लेके अंदर चला गया, सत्य कहानी है, सत्य कहानी है, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, लेकिन ये कह रहा हूं कि नाम हर हालत में पवित्र ही रहता है, नाम पवित्र है, और अपवित्र चीज को नाम ही पवित्र करता है, नाम के बिना कोई भी चीज पवित्र नहीं हो सकती। तो तार मध्य सर्वश्रेष्ठ नाम संकीर्तन, निरपराधे नाम लेते पाए कृष्ण प्रेम धन, हे कृष्ण, प्रेम धन प्राप्त करने के लिए नाम जप करना चाहिए। तो ये पाप निवारण, ये इनकी साइड इफेक्ट, उनकी आपो आप पाप निवारण। भगवान श्री कृष्ण आपो आप अपने भक्तों का पाप हर लेते हैं, आपो आप। नाम जप करने की जरूरत नहीं कि पाप आपका मोचन हो जाए, लेकिन भगवान श्री कृष्ण ही खुद ऐसे भक्तों का पाप हरण कर लेते हैं। सर्वधर्मान परित्यज्य मोक्ष इच्छामि महासुच, मैं पाप हर लेता हूं उनका। तो ये नाम जप का प्रयोजन है श्री कृष्ण का प्रेम, शुद्ध प्रेम कृष्ण को हमारी ओर आकर्षित करने के लिए। शुद्ध भक्ति कृष्णा आकर्षिणी च, कृष्ण आकर्षिणी, कृष्ण को शुद्ध भक्ति भक्त की ओर खींचती है। बेवस होके कृष्ण खींचे जाते हैं, बेवस होके ये शुद्ध भक्ति कृष्ण को भक्त की ओर खींचती है। तो ये उनका मुख्य फल है कृष्ण भक्ति का। और साइड फ्रिंज बेनिफिट, फ्रिंज बेनिफिट का हिंदी मुझे पता नहीं है, साइड इफेक्ट अथवा तो साइड बेनिफिट, साइड बेनिफिट की हिंदी क्या है कि मुख्य कर रहे हैं ये और साथ में ये भी हो रहा है, साथ में आपो आप ये होता, आपो आप ये होता, तो आपो आप पाप मोचन हो जाएगा। तो आइए आज का श्लोक करते, 15 मिनट बाकी है, नहीं तो ये चैप्टर पूरा करना था मुझे, चारों चैप्टर वो रह जाएगा। लेकिन तात्पर्य यह है कि कर्म से नहीं होगा, ज्ञान योग से नहीं होगा, ध्यान योग से, राज योग से, सांख्य योग से, सहज योग से, कोई भी प्रकार से ये काम नहीं होगा। कैसे होगा? क्वचित केवल या भक्त्या वासुदेव परायणा अगम धुनवंती कार्सन्य निहार एव भास्कर। ये मुख्य फल और गौण फल, गौण फल और मुख्य फल। मुख्य फल नाम संकीर्तन का है, श्री कृष्ण आकर्षिणी च, और उसके साथ पाप आपो आप भाग जाएंगे, दूरे दूरे पाप दूरे जाए। क्या है उनके? पाप दूरे जाए, पाप दूर भाग जाते हैं। तो आइए आज का श्लोक कर लेते हैं, बाद में और बातें समय होगा तो कर लेंगे। तो 33वां श्लोक है, कृष्णांग्री पद्म मधु लीटन पुनर्विष्ट पुनर्विसृष्ट माया गुणेशु रमते वृजिनावहेशु अन्यस्तु कामहत आत्मरज प्रमास्तु इहेत कर्म यतएव रज पुनः स्यात्। तो जो भक्तगण भगवान कृष्ण के चरण कमलों के मधु को सदैव चाटते रहते हैं, वे उन भौतिक कर्मों की तनिक भी परवाह नहीं करते, भौतिक कर्मों की तनक भी परवाह नहीं करते। कौन? श्री कृष्ण के चरण कमल का मधु जो चाटते रहते हैं भक्त, वो भक्त तनिक भी परवाह नहीं करते। जो प्रकृति के 3 गुणों के अधीन संपन्न किए जाते हैं और केवल दुखदायी होते हैं, निसंदेह भौतिक कर्मों में वापस आने के लिए भक्तगण कभी भी कृष्ण के चरण कमलों को नहीं छोड़ते। फिर से, निसंदेह भौतिक कर्मों में वापस आने के लिए भक्तगण कभी भी कृष्ण के चरण कमलों को नहीं छोड़ते, किंतु अन्य लोग जो भगवान के चरण कमलों की सेवा की उपेक्षा करने तथा काम इच्छाओं से विमोहित होने से वैदिक कर्म कांडों में लिप्त रहते हैं, कभी कभी प्रायश्चित के लिए कर्म करते हैं, फिर भी अपूर्ण रूप से शुद्ध होने से वे पुनः पुनः पाप कर्मों में लौट आते हैं, पुनः पुनः चर्वित चावनाना। तो यहाँ आखिरी श्लोक है, ये 3 श्लोक आखिरी हैं, और आखिरी श्लोक में नारायण विष्णु और सब नाम छोड़ छाड़ के सुखदेव गोस्वामी डायरेक्ट कृष्ण के पदारविंद का मधु चाटने वाले भक्तों की बात कर रहे हैं। कृष्ण कृष्णा 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 हे, और कुछ नहीं, कृष्णा। सब कुछ छोड़ छाड़ के चैतन्य महाप्रभु ने कृष्णा नाम, कृष्णा 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 हे। तो ये मकरंद श्री कृष्ण के चरणारविंद, पद्म कमल चरणारविंद के मकरंद का आस्वादन करने वाले भक्त कभी भी भौतिक जगत में वापिस भौतिक कार्य करने में नहीं लौटते। जैसे विष्ठा मेरे अपने शरीर में होती है, शरीर कहलाता है। जैसे विष्ठा छोड़ दी आपने, विष्ठा त्याग किया, मल त्याग किया, बाद में ये नहीं कहते है मेरा शरीर का भाग था, लेट मी स्टिक इट बैक इनटू माय बॉडी, ऐसा नहीं कहते कि मेरे शरीर का, प्रभुपाद जी कहते हैं एक्चुअली, ये प्रभुपाद जी के वर्ड है इसलिए इंग्लिश ने मैंने बोल दिया कि विष्ठा इट वॉज अ पार्ट ऑफ माई बॉडी सो लेट मी स्टिक इट बैक इनटू माय बॉडी, ऐसा नहीं करते कोई। ये भौतिक संसार विष्ठा है, सब कुछ भौतिक विष्ठा है, गंदा है। और जब भक्त छोड़ देता है तो वो वापस वो विष्ठा को वापस नहीं लेने जाता कि मेरा था ये, मेरा था ये, मेरा था। तो ये भगवान के भक्त हैं। यहाँ सर दे के होते हैं सौदे, ये भक्ति भक्ति इतनी ऊंची है कि स्टे हाई फॉर एवर, प्रभुपाद के शब्द। जब सैन फ्रांसिस्को ने उन्हें संकीर्तन हॉल में किया था, बड़े हॉल में बॉल डांस करने का हॉल था, और वहां सब बॉल डांस करते हैं, डांस डिस्को डांस। तो ऐसे डिस्को डांस वाले हॉल में उनका कीर्तन और डांस था प्रभुपाद जी का, प्रभुपाद जी कीर्तन करेंगे और सब लोग डांस करेंगे। तो इनकी एडवर्टाइजमेंट बनाई गई, और हिप्पी लोग थे सारे, तो हिप्पी लोग को आकृष्ट करने के लिए ये हरिनाम संकीर्तन लिखा, और ये हरिनाम संकीर्तन से यू विल स्टे हाई फॉर एवर। मतलब कि एलएसडी मरीवाना लेते हैं तो लोग हाई रहते हैं, हाई, यू नो, हेलुसिनेशन, विंडो में से मैं फ्लाई कर रहा हूँ, ऐसे काल्पनिक। तो ये हिप्पियों के लिए एडवर्टाइजमेंट, ये संकीर्तन और डांस करो और स्टैंड करो और हमेश के लिए हाई रहो, हमेश के लिए हाई, स्टे हाई फॉर एवर। तो ये संकीर्तन करने वाले भक्त हमेशा हाई रहते हैं, बाद में उतरती हैं चढ़ती हैं, वो मस्ती नहीं है, ये मस्ती कभी भी उतरती नहीं। ऐसी है हरि श्री कृष्ण का प्रेम की मस्ती, ऐसी है गोपियों जैसी। मुझे आज कई श्लोक गोपियों के श्लोक सुनो, गोपियों की मस्ती कैसी है। ये यहाँ कहा गया है कि कृष्ण अंगरी मधु, कृष्ण अंगरी मधु का जो हमेशा आस्वादन करते हैं, गोपियां गाती हैं, चरण चरण मीयूषाम संस्रुतेर भयात विरचिता भयम विष्णु धूर्यते, चरण मीयूषाम संस्रुतेर भयात, आपके चरणारविंद ये संस्रुति संस्रुति संस्रुतिम घोरम आपन्न संस्रुतिम घोरम यत नाम विवशो गृणात ततो सद्यो विमुच्येत यत बिभेति स्वयं भयम संस्रुतिम घोरम। ये संस्रुति संसार जन्म मृत्यु जंजाल को आपको काटनी है तो भगवान का नाम संस्रुतिम संस्रुतिम घोरम आपन्न संस्रुतिम घोरम यत नाम विवशो गृणात। भगवान श्री कृष्ण का नाम विवस्था से भी अगर लिए लिया गया, विवशो गृणात, ततो सद्यो विमुक्ते, तुरंत मुक्ति मिल जाएगी, राह नहीं देखनी पड़ेगी। ततो सद्यो विमुच्येत यत बिभेति स्वयं भयम, ये संसार मोचन हो जाएगा। प्रणत देहि नाम पापकर्षणम तृणचराणुगम श्रीनिकेतनम फणिफणार्पितम ते पदाम्बुजम कुणुकुचे सुनह क्रुंदी रुच्छयम। गोपियां, गोपियों की चेतना कितनी ऊंची है कि भगवान के चरणार विंद फणि फणार पितम ते पदाम्बुजम प्रणत देही नाम पाप कर्षणम। आपके चरणार विंद में जिन्होंने झुकाया उनके पाप तुरंत नष्ट हो जाते हैं। कब नष्ट हो जाते हैं? कब? तुरंत नष्ट हो जाते हैं। तत्ते अनुकंपाम सुसमीक्ष मानो भुंजान एवात्म कृताम विपाकम यत वाक मनोभीर विदधु नमस्ते स मुक्ति पदे दया भाक। ब्रह्मा कहते हैं, भगवान कृष्ण, अगर किसी ने आपके चरणारविंद में नमस्कार कर दिया तो आप ये सोच नहीं सकते कि मैं उनका कल्याण करूं या उनका कल्याण न करूं, करना ही पड़ेगा। ऐसे चरणारविंद प्रणत देही नाम पाप कर्षणम। प्रणत देही नाम, जो भी आपके चरणों में झुका उनके पाप तुरंत नष्ट हो जाएंगे। तृणचराणु गम श्री निकेतन, आपके चरणारविंद श्री लक्ष्मी का निकेतन है, उनका घर है, उनकी कोठी है, उनका निवास स्थान है। श्री निकेतनम फणि फणार्पितम ते पदाम्बुजम। फणि नाग, काली नाग के फणों पर आपने जो पदाम्बुजम आपके चरणारविंद रखे थे, वो चरणारविंद हमें अर्पण करो ताकि हमारा ये जो आपके प्रति जो आकर्षण है, अखूट अगाढ़ आकर्षण है, क्रंदी रुच्छयम। तो ये प्रार्थना कर रही है लेकिन वो नहीं चाहती है कि भगवान श्री कृष्ण का आकर्षण कम हो। चलसी यत व्रजान चारयन प्रशुन नलिन सुंदरम नाथ ते पदम। गोपियां भगवान के चरणारविंद की इतनी श्लाघा करती हैं। चरणारविंद अगर वो कामुक थी तो चरणारविंद की श्लाघा नहीं करती, किसी और भाषा से काम करती, भाषा का उपयोग करती। लेकिन गोपियां ये शुद्ध कृष्ण प्रेमी है, शुद्ध कृष्ण प्रेमी। चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि भक्तों में सर्वोत्तम भक्त कोई हो तो वो गोपिया है। आराध्यो भगवान व्रजे सतनया तद्धाम वृंदावनम रम्या क्वचित उपासना व्रजवधु वर्गे न वा कल्पिता। व्रजवधु गोपी, वधवः ऐसा शब्द भागवत में आया, वधवः कृष्णा वधवः, ये कृष्णा की वधुएं हैं, गोपियां कृष्ण की हैं। जैसे आप आपके पति की हो और पति आपके है, उसी ही तरह गोपियां कृष्ण की हैं, स्वकिया है, पराकिया नहीं है। गोपियां कृष्ण की ही है, स्वकिया। पराकिया भाव अंगीकार करते हैं वो अलग बात है, लेकिन है स्वकिया। तो ये कहती है कि नलिन सुंदरम नाथ ते पदाम, आपके नलिन सुंदर कमल जैसे सुंदर चरणारविंद शील तृणांकुरई सीध तिथि न कलिलताम मन कांत गच्छति। हमारे मन बेचैन हो जाते हैं। कलिलताम सुंदर, कितना सुंदर वर्ड है, कलिलताम बेचैन, कलिलताम मन कांत गच्छति। आपके चरणारविंद में वो काटे और सील तृण अंकुर ये चुभ जाएंगे, काट लेंगे आपका पांव। और आपके पांव कैसे हैं? नलिन सुंदर मुलायम, नलिन जैसे, नलिन कमल जैसे मुलायम पदारविंद। ये तृण शील तृणांकुरई सीध तिथि न कलिलताम मन कांत गच्छति। ऐसे आपके चरणारविंद, ये चरणारविंद की भक्ति है। गोपियां उनका चरणारविंद एक पल मात्र भी भूल नहीं सकती। प्रणत कामदम पद्मजार्चितम। प्रणत कामदम, जो आपके चरणारविंद को प्रणत जो नमस्कार करते हैं, कामदम उनका काम, उनका इच्छाएं तुरंत पूर्ण हो जाती है। प्रणत काम दम पद्मजा अर्चितम, पद्मजा ब्रह्मा अर्चितम सेवा करते हैं ब्रह्मा जी। धरणी मंडलम ध्येय महापदी, वो धरणी पृथ्वी का आभूषण है, आपके चरणारविंद पृथ्वी का आभूषण है। अभी सबका ध्यान खत्म, इसलिए मैं यहाँ कथा को विराम दूंगा। नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नामने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषवादी पाश्चात्यदेशधारिणे। भाषांतर और भावार्थ श्रील प्रभुपाद द्वारा। हे राजन, महान अधिकारियों का अनुगमन करके भगवान के पवित्र नाम का निरंतर कीर्तन उन समस्त लोगों के लिए सफलता का निसंशय तथा निर्भीक मार्ग है। जो समस्त भौतिक इच्छाओं से मुक्त हैं अथवा जो समस्त भौतिक भोगों के इच्छुक हैं, और उन लोगों के लिए भी जो दिव्य ज्ञान के कारण आत्मतुष्ट है। भावार्थ, भगवान के पवित्र नाम के निरपराध भाव से कीर्तन तथा श्रवण से मनुष्य पहले भगवान के दिव्य रूप से परिचित होता है, फिर भगवान के गुण से परिचित होता है, और तब उनकी लीलाओं इत्यादि की दिव्य प्रकृति से परिचित होता है। यहाँ पर इसका उल्लेख हुआ है कि भगवान नाम को अधिकारियों से सुनकर उसका निरंतर कीर्तन करना चाहिए। इसका अर्थ यह हुआ कि अधिकारी अर्थात बड़े चढ़े ऋषि मुनि और धर्मवेत्ता महाजन, इन सब अधिकारियों से श्रवण करना पहली शर्त है। पवित्र नाम का श्रवण करते रहने से मनुष्य क्रमशः भगवान के रूप गुण लीलाओं आदि के विषय में श्रवण करने की अवस्था को प्राप्त कर होता। इस तरह उत्तर उनकी महिमा के कीर्तन की आवश्यकता उत्पन्न होती है। यह विधि न केवल भक्तिमय सेवा की सफल संपन्नता के लिए संस्तुति की गई है, अर्पित उन लोगों के लिए जो संस्तुति की गई है जो भौतिक रूप से आसक्त है। श्री सुखदेव गोस्वामी ने स्वामी के अनुसार सफलता प्राप्त करने की यह सुस्थापित विधि है, जो न केवल उनके द्वारा अपितु समस्त अन्य पूर्ववर्ती आचार्य द्वारा निश्चित की गई है। अतएव और आगे प्रमाण देने की आवश्यकता नहीं रह जाती, एतद निरविद्यमानानां इच्छताम अकुतो भयात् योगिनाम नृप निर्णिता हरेर नाम अनुकीर्तनम। हे नृप राजा परीक्षित, सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं कि एतद निर्विद्यमानानां, जो निर्विद्यमान है, जो ये संसार से विरक्त हो गए हैं, निर्विद्यमानानां, और सब ऋषि मुनि वहां बैठे थे, सब संसार से विरक्त थे, व्यासदेव बैठे थे, उनके बिल्कुल साथ में उनके गुरुदेव नारद मुनि बैठे थे, और सप्तर्षि और पराशर मुनि व्यासदेव के पिता, सब 60,000 ऋषि मुनि, सारे ब्रह्मांड के, पृथ्वी के नहीं, सारे ब्रह्मांड के दूर दूर से दूसरे लोगों से लोकों से सब बड़े बड़े महात्मा ऋषि मुनि ये महाराज परीक्षित के अंत 7 दिन की कथा सुनने के लिए वहां उपस्थित थे। तो इन सब ऋषि मुनियों ने एतद निर्विद्यमानानां इच्छताम अकुतो भयात योगी नाम नृप निर्णिता। हे नृप, हे योगी, हे राजा, योगी नाम नृप निर्णिता, योगियों ने, सब ऋषि मुनियों ने, हे राजा, निर्णिताम निर्णय लिया है। क्या निर्णय लिया है? हरेर नाम अनुकीर्तनम, कलयुग में हरि का नाम का अनुकीर्तन, समकीर्तन, उत्कीर्तन ही एकमात्र इलाज है। चाहे वो विरक्त हो, गृहस्थ हो, आसक्त हो, कामी हो, स्वर्ग की इच्छा वाला हो, योगी हो, भोगी हो, जो भी हो, सबके लिए, सारे संसार के लिए एकमात्र कल्याण का मार्ग हरेर नाम अनुकीर्तनम, हरि के नाम का अनुकीर्तन, कृष्ण का नाम का अनुकीर्तन, ये एक ही मात्र उपाय है। श्रील सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि मेरे पिताजी से मैंने ये भागवत संहिता सुनी और ये भागवत संहिता का मैं आपको सार कह रहा हूं। इतना ही नहीं, सब योगियों का यूनैनिमस डिसीजन, निर्णय, निर्णिताम, यूनैनिमस डिसीजन, सभीयों का एक वोट, दूसरा मत नहीं, एक मत। क्या मत? हरेर नाम अनुकीर्तनम, भगवान श्री कृष्ण का अनुकीर्तन, नाम कीर्तन, सम्यक कीर्तन, संकीर्तन, योगी नाम नृप निर्णिताम अनु हरेर नाम अनुकीर्तनम। किसके लिए? सब के लिए, सारे संसार के लिए, जो जो निर्विद्यमाना नाम है, विरक्त है, एतत निर्विद्यमाना नाम इच्छताम अकुतो भयात, और जो इच्छा वाले हैं, मुझे स्वर्ग मिले, सुंदरी मिले, सुंदर पति मिले, रूपवती भार्याम देही, वरम देही, कोठिम गृहम देही, सब कुछ देही देही देही, तो इन लोगों के लिए भी हरेर नाम अनुकीर्तनम, निर्विद्यत माना नाम और इच्छताम और अकुतो भया, जिनको भय से भी मुक्त, भूतों से मुक्त, सबसे मुक्ति जिनको चाहिए, सबके लिए एक इलाज है। श्रील प्रभुपाद कहते हैं, बहुत प्रोफाउंड स्टेटमेंट, बहुत प्रोफाउंड स्टेटमेंट, क्या हिंदी है प्रोफाउंड स्टेटमेंट, जो भी हो, मुझे हिंदी नहीं आती, तो प्रोफाउंड स्टेटमेंट प्रभुपाद जी का, कि हर गवर्नमेंट, हर देश की गवर्नमेंट यूनैनिमस ये डिसीजन लेना चाहिए कि राज्य में श्री कृष्ण के नाम का अनुकीर्तन हमेशा होते रहना चाहिए। ये यूनैनिमस कायदा होना चाहिए स्टेट में। ये प्रभुपाद जी का प्रोफाउंड स्टेटमेंट है, क्योंकि ये भागवत का परपोर्ट है। भागवत के अंत में भी आखिरी श्लोक भागवत का, हरि का नाम का संकीर्तन ही एक मात्र इलाज है, और ये शुरुआत का है, ये शुरुआत के श्लोक है सारे। तो यहां बहुत सुंदर बात, हरेर नाम, हरेर नाम, हरेर नाम गतिर अन्यथा, और कोई भी इलाज नहीं। आप तप करो, ध्यान करो, तीरथ करो, शास्त्र पढ़ो, ए बाबा वो बापा के पास इधर उधर सब कुछ भी आप करो, लेकिन जब तक ये निष्कर्ष पर नहीं आओगे, हरेर नाम अनुकीर्तनम, सब कुछ खोखला है, सब कुछ खोखला है, बेकार है। ये हमने ये आख्यान में भी कहा, सुना, तप, ज्ञान, ज्ञान योग नहीं चलेगा, कर्मयोग नहीं चलेगा, तप नहीं चलेगा, कुछ नहीं चलेगा। अंत में क्या चलेगा? श्री कृष्ण के नाम का सतत कीर्तन, सततम कीर्तयन्तु माम। 16 माला मिनिमम, 16 माला ए डे विल मेक योर डे, अदरवाइज इट विल स्पॉइल योर डे। एवरी राइजिंग एंड सेटिंग ऑफ ए सन टेक्स अवे ड्यूरेशन ऑफ लाइफ, टेक अवे। भागवत कहता है यू विल स्पॉइल योर डे। उद्यान अस्तान च अनसौ तस्यार्थे यत क्षणो नित्यम उत्तम श्लोक वार्तया। उत्तम श्लोक श्री कृष्ण का नाम ही एकमात्र इलाज। तो बार बार दोहराया गया सारे भागवत में। तो मेरी आपसे विनम्र सविनय विनम्र प्रार्थना है कि आप सब 16 माला करें और आपका जीवन धन्य धन्य बनाए, नहीं तर आपका जीवन शून्य शून्य या धन्य। क्या चाहिए आपके हाथ में? एतद् निर्विद्यमानानां इच्छतो अकुतो भयात् योगिनां नृपनिर्णीताम्। सब योगियों ने ये यूनैनिमस, वेरी गुड, थैंक यू। सब योगियों ने ये यूनैनिमस डिसीजन लिया। तो शास्त्र साधु एंड गुरु का यूनैनिमस डिसीजन, एक मत होकर ये निर्णय लिया। योगिनां नृपनिर्णीताम्, निर्णय लिया। क्या निर्णय लिया? हरेर नाम अनुकीर्तन, भगवान श्री कृष्ण के हरे कृष्ण महामंत्र की 16 माला ए डे, तो आपका जीवन धन्य, अदरवाइज शून्य। तो ये प्रेम धारा पार्वती राठौर, ये सवाल जवाब आप उनको पूछ सकते हो। सो एनी क्वेश्चन एट ऑल, सवाल?
हरे कृष्णा।
हाँ,
गुरु महाराज के होते हुए मैं संदेह का निराकरण करूं, ये तो मुझे समझ ही नहीं आता कैसे करूं, क्योंकि मैं खुद बहुत सारे संदेहों में घिरी हुई हूँ। तो यहाँ मेरे पास वरिष्ठ भक्तजन है, इतना सुंदर सुअवसर है, मैं तो चाहती हूँ मेरे संदेहों का निराकरण हो।
नहीं, भगवान भक्तों के मुंह से बोलते हैं तो आपके मुंह से भी बोलेंगे, आप भी भक्ति न हो। सवाल?
हरे कृष्णा।
हरे कृष्णा।
महाराज जी, मैं पहले प्रणाम करता हूँ। एक मन में एक छोटी सी प्रार्थना है। अभी अभी भाई साहब से चर्चा कर रहे थे कि भगवत नाम और हरे कृष्ण हरे राम, राम राम हरे हरे, इनमें अंतर कुछ कहा जा सकता है या सब एक है?
आपने कहा भगवत नाम,
हाँ जी, और हरे कृष्ण राम, इसमें कोई अंतर है?
आपने कहा भगवत नाम यानी कि भगवान का नाम।
हाँ, भगवान का नाम।
तो आपके हिसाब से भगवान कौन है?
भगवान अब जिसका जो इष्ट है वो उसके लिए वही भगवान है।
यही तो मार्ग आ गई ना दुनिया। क्योंकि हमें शास्त्रों की तरफ मुड़ना चाहिए, और शास्त्रों में देखिए, समस्त शास्त्र जो आपके सामने मौजूद हैं, आप ध्यान से सुनिए, हमारे सामने जो भी शास्त्र मौजूद हैं वो शीला व्यास देव जी ने कंपाइल किए हैं, हमारे लिए कंपाइलेशन हुई है, ठीक है ना, रिकॉर्ड किया है। और उसमें उन्होंने कहा है एतांश कलाभा कृष्णो भगवान स्वयं इंद्रारी व्याकुलम लोके मृडियंती युगे युगे, यानी कि ये तो उन्होंने जिक्र किया बहुत सारे अवतारों का भगवान के, लेकिन उन्होंने कहा कि भाई एक ही भगवान है और उनका नाम है श्री कृष्ण। जब हम कहते हैं कि हमारे ये ईष्ट हैं, फला फला देवी देवता ईष्ट हैं, तो वो भगवान के क्या है, रिप्रेजेंटेटिव हैं, प्रतिनिधित्व करते हैं। भगवान सिर्फ एक हैं और बाकी सब उनके अंश हैं, जैसे आप भी उनके अंश हैं पर आप भगवान नहीं हैं, समझ रहे हैं? तो उसी प्रकार से जो हमारे जितने भी देवी देवता हैं परम आदरणीय हैं और बहुत शक्तिशाली हैं, क्योंकि भगवान ने उनको एक जिम्मा दिया हुआ है, और वो दिया है कि सारे सांसारिक कार्यों को चलाने का, क्योंकि भगवान स्वयं आनंद घन है, वो आपको आनंद से रूबरू कराते हैं। तो इसलिए आप हरे कृष्ण महामंत्र जब करेंगे तो वही भगवान का नाम है।